tas
tas
tu saha
tu saha
indriyani paramya var
indriyani paramya
indriyevya parambana
indriyevya parambana
manasastu para buddhir
manasastu para buddhir
no buddhe paratas tu saha
no buddhe paratas tu saha
indriyani paramya var
indriyani paramya var
indriyevya parambana Manasastu para buddhir
Manasastu para buddhir
Yo buddhe paratastu saha
Yo buddhe paratastu saha
Indriyani paranyavur
Indriyani paranyavur
Indriyevya paramana
Indriyevya paramana
Manasastu para buddhir
Manasastu para buddhir
Yo buddhe paratastu saha
Yo buddhe paratastu saha
Indriyani,
Indriyani,
senses,
Parani,
Parani,
superior,
Ahu,
Ahu,
are said,
Indriyebhyah,
more than the senses,
Param,
superior,
Manaha,
the mind,
Manasaha,
more than the mind,
Tu,
also.
Para,
superior.
Buddhi,
intelligence.
Yaha,
who?
Buddhe,
more than the intelligence.
Parataha,
superior.
Tu,
but.
Saha,
he. The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind. And he, the soul, is even higher than the intelligence.
Indriya jad dhatu se upar hoti hai. मन इन इंद्रियों से उत्पन्न होता है. जीवात्मा की बुद्धि इस मन से उत्पन्न होती है और जीवात्मा इस बुद्धि से ही उत्पन्न होता है.
The senses are different outlets for the activities of lust. Lust is reserved within the body. But it is given vent through the senses. Therefore, the senses are superior to the body as a whole. These outlets are not in use when there is superior consciousness or Krishna consciousness. In Krishna consciousness, the soul makes direct connection with the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the hierarchy of bodily functions, as described here, ultimately ends in the Supreme Soul. Bodily action means the function of the senses, and stopping the senses means stopping all bodily actions. But since the mind is active, then even though the body may be silent and at rest, the mind will act, as it does during dreaming. But above the mind is the determination of the intelligence, and above the intelligence is the soul of the prophet. If therefore the soul is directly engaged with the Supreme, naturally all other subordinates, namely the intelligence, mind, and senses, will be automatically engaged. In the Katha Upanishad, there is a similar passage in which it is said that the objects of sense gratification are superior to the senses, and mind is superior to the sense objects. If, therefore, the mind is directly engaged in the service of the Lord constantly, then there is no chance that the senses will become engaged in other ways. This mental attitude has already been explained. Param drishtva nivartate. If the mind is engaged in the transcendental service of the Lord, There's no chance of its being engaged in the lower propensities. In the Katha Upanishad, the soul has been described as Mahan, the great. Therefore, the soul is above all, namely the sense objects, the senses, the mind, and the intelligence. Therefore, directly understanding the constitutional position of the soul is the solution of the whole problem. With intelligence, one has to seek out the constitutional position of the soul and then engage the mind always in Krishna consciousness. That solves the whole problem. A neophyte spiritualist is generally advised to keep aloof from the objects of the senses. But aside from that, one has to strengthen the mind by use of intelligence. By intelligence, one engages one's mind in Krishna consciousness. By complete surrender under the Supreme Personality of Godhead, then automatically the mind becomes stronger. And even though the senses are very strong, like serpents, they will be no more effective than serpents with broken fangs. But even though the soul is the master of intelligence and mind, and the senses also, still, unless it is strengthened by association with Krishna and Krishna consciousness, there is every chance of falling down due to the agitated mind. Om jnana chindiyan tasya jnantrana shalakaya sakshur miritam jena tasmai shri gurave namaha shri chaitanya prabhupistam sthapitam jena bhutale svayam rupa pada maityam tathati shapadantikam vandeham shri guru shri jutha pada kavalam Shri Guru Vaishnavam Sucha Shri Rupam Shagrajatam Shagana Gaganatam Nityamastam Satipam Sadvaitam Sadhapurusham Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Shagana Lalita Sri Vishakhanapitam Hey Krishna, Karuna Sindho, Dina Bandho Jagratate, Gopesha Gopika Kanta, Tata Kanta Pumosute, Tata Kanta Gopaki, Kade Prithavaneshari, Krishna Pumosute Devi, Pramami. Vancha kalpatagurvyascha pripasintho vyayevacha patitanam padanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudevi Gopabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Indriyani Paranyagur, Indriyekya Paramparaha. Manasas Tu Parabhutir, Yogute Pantastu Saha. Here, Lord Krishna is giving a hierarchy.
इस श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण एक तरह की स्थिति बता रहे हैं
the first on the lowest platform we have the objects of the senses
सबसे नीचे के स्तर पर इंद्रियों को भोग करने वाले जो पदार्थ रहते हैं वो होते हैं
higher than that we have the senses themselves and higher than that is the mind
और इन पदार्थों के ऊपर इंद्रियां होती हैं और इंद्रियों के ऊपर मन होता है
higher than the mind intelligence and higher than intelligence the atma
मन के ऊपर स्थित होती है बुद्धि और बुद्धि के ऊपर होती है जीवात्मा.
So the problem is that the mind and the senses and even the intelligence are occupied by the material energy in the form of lust.
तो जो सबसे बड़ी परेशानी वो ये है कि मन और इंद्रियां इंद्रियों के भोग करने की इच्छा में पूरी तरह फंसी हुई होती है.
इंद्रियानि what is that? Mano buddhir asyatishthana uchyate etaira vimohayatyeta jnanam apritya deyinam. The lust means material desire for enjoyment.
काम की परिभाषा है इंद्रिय भोग करने की इच्छा.
In contact with this material energy, every one of us is trying to enjoy that energy.
और प्रकृति के संबंध में आकर जीवात्मा हर जीवात्मा यही प्रयास करती है किस तरह इंद्रियों का भोग कर सके.
And that desire for enjoyment becomes like a fire.
और यह इंद्रिय भोग करने की इच्छा एक तरह की अग्नि या आग बन जाती है
which can't be satisfied.
जो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाती.
And therefore one is drawn to the objects of the senses practically as if involuntarily.
इसीलिए इच्छा ना होते हुए भी हर मनुष्य हर जीवात्मा इंद्रिय भोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है.
Like when ladies go shopping.
जिस प्रकार स्त्रियां शॉपिंग के लिए तत्पर रहती हैं उसी प्रकार मन इंद्रिय भोग करने के लिए तत्पर रहता है.
There's practically a powerful force which is drawing us to this or that.
एक बहुत ही प्रबल शक्ति इंद्रियों को तृप्ति करने की हमारे को खींचती रहती है उनकी तरफ.
I went shopping with my mother in Delhi. I saw that practically there's no force in the world more powerful than a woman's desire to shop.
महाराज अपनी माता के साथ में दिल्ली में शॉपिंग करने के लिए खरीदारी करने के लिए गए तो महाराज ने देखा कि एक स्त्री के लिए का जो प्रबल शक्ति रहती है उस स्त्री को शॉपिंग के लिए खींचने के लिए उससे ज्यादा कोई बड़ी शक्ति नहीं है महाराज.
Maybe the only force that's greater is the man's attraction to the woman.
पर शायद एक ऐसी अट्रैक्शन ऐसी शक्ति है वो है पुरुष की स्त्री के प्रति जो आसक्ति होती है वो शायद शॉपिंग से ज्यादा बड़ी है.
And this is a very interesting arrangement by material nature that the woman wants to shop, the man is attracted to the woman, so the man winds up paying for all the shopping.
तो ये प्रकृति का इस तरह का अरेंजमेंट है कि जो स्त्री होती है वो शॉपिंग करना चाहती है और पुरुष स्त्री की तरफ आसक्ति बना के रखा होता है इसीलिए स्त्री शॉपिंग करती है और पैसा उसका पति या उसका पुरुष होता है.
So men all over the world are working very hard so that their wives can go shopping.
तो पूरी दुनिया के जो पुरुष हैं वो बहुत मेहनत करते हैं दिन रात की ताकि उनकी पत्नी उनकी स्त्री जो है वो जाके खरीदारी कर सके.
That's a mobile, and we can do another mobile check. Sabhi mobile button today.
कृपा करके अपने मोबाइल फोन साइलेंस पे कर दीजिए क्योंकि प्रवचन के बीच में फिर परेशानी होती है थोड़ा. तो अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ और साइलेंट पे कर दीजिए और कोई भी भक्त बगैर प्रसाद लिए नहीं जाइएगा पीछे से प्रसाद लेके जाइए.
So the senses are attracted to the objects of the senses.
तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियों को भोग करने के लिए जो पदार्थ रहते हैं उसकी तरफ हमेशा दौड़ती है.
and that becomes a source of entanglement.
और इस प्रकार हर जीवात्मा इंद्रियों के भोग करने के चक्कर में फंस जाती है.
The after the senses become attracted to something, then it sends the message to the mind, and the mind starts thinking about, oh, wouldn't it be nice?
जैसे ही इंद्रियां इंद्रियों को भोग करने के पदार्थ के संपर्क में आती हैं, तो हमारा मन हमारे मन को वो एक सिग्नल भेजती है, एक संदेश भेजती है, और फिर मन जो है निरंतर ये सोच लगता है, हाँ ये कितना अच्छा होगा मैं अगर ऐसे अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करूँ, कितना अच्छा होगा.
The mind starts imagining so many things.
और उस प्रकार हमारा मन कल्पना करने लगता है फिर निरंतर अपने इंद्रियों को भोग करने की, एंजॉय करने की.
Then the mind engages the intelligence that we want this. Now, how are we going to get it?
उसके बाद मन बुद्धि का प्रयोग करता है और बुद्धि को संदेश देता है कि किस प्रकार से मैं अपने इस इंद्रियों का भोग कर सकूं.
The intelligence becomes engaged to serve the senses.
और उस प्रकार एक जीवात्मा की बुद्धि जो है वो इंद्रियों की तृप्ति करने के चक्कर में फंस जाती है.
We see this even in the animal society. If there's some pet animal, suppose in the West they're keeping cats as pets, so they don't. If you've got some milk on your table, the cat doesn't jump up and get the milk. The cat waits till you leave the room, then it jumps up and gets the milk. This is intelligence.
तो बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार हर जीवात्मा करते हैं, ये तो एक पशु के योनियों में भी देखा जा सकता है. महाराज ने उदाहरण दिया एक बिल्ली का कि कई लोग अपने घर में बिल्ली कुत्ते रखते हैं, पाश्चात्य देश में बिल्ली रखते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे कि बिल्ली को अगर दूध वो देखती है, बिल्ली टेबल के ऊपर पड़ा हुआ, तो एकदम से जाके दूध नहीं झपटती, वो पहले प्रतीक्षा करती है, वेट करती है कि कब मालिक बाहर जाएगा, और जैसे ही आदमी घर छोड़ के बाहर निकलता है तो बिल्ली उसके बाद में दूध के ऊपर झपटती है.
So this is intelligence, but it's intelligence engaged in the service of sense gratification.
तो ये उदाहरण दर्शाता है कि किस प्रकार बुद्धि का प्रयोग करते हैं, पर ये बुद्धि का प्रयोग है केवल अपने इंद्रियों को की तृप्ति करने के लिए, इंद्रियों के पदार्थ के साथ उनका प्रयोग करने के लिए.
In this way, the lower is controlling the higher.
इस स्थिति में जो नीचे की चीज है, जो यहाँ पे इंद्रियां हैं, वो ऊपर की चीज बुद्धि को अपने कंट्रोल में रख रही है.
The sense objects are pulling the senses are pulling the mind, mind is pulling the intelligence, and the soul is trapped in serving the senses.
तो इंद्रिय तृप्ति के विषय विषय इंद्रियों को खींचते हैं, इंद्रियां मन को खींचती है और मन बुद्धि को खींचता है, और ये बुद्धि जो है एक जीवात्मा को निरंतर फंसा के रखती है.
In this way we become engaged as servants of the senses, trying to satisfy the demands of the senses.
इस प्रकार इस उदाहरण से हमने समझा कि किस प्रकार हम इंद्रियों के दास बन जाते हैं एक जीवात्मा होते हुए भी.
And the senses are never satisfied. The senses never say, well, that's nice, now I'm fully satisfied, I release you from service. No, more, we want more. What's next? We want more.
पर इसके अंदर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो इंद्रियां हैं, ये कभी भी संतुष्ट नहीं होती, कभी सैटिस्फाइड नहीं होती, और कभी ऐसा नहीं होता कि हाँ अब हो गया, इतना मेरे लिए काफी है. हमेशा वो निरंतर ये बोलती रहे कि मेरे को और चाहिए, मेरे को और चाहिए.
So the spirit soul becomes degraded because in this way he's engaged in the service of matter, dull matter, and in this way he suffers also.
इस प्रकार जो जीव आत्मा है वो गिर जाती है, अधम स्थिति में आ जाती है, क्योंकि वो जड़ चीजें जो इंद्रिय तृप्ति के विषय हैं उसके अंदर हमेशा फंसी रहती है.
Purusha prakriti sthohi bhokte prakriti jantanam karanam guna sangasya sadasat yoni jantanam. This becomes the cause of repeated birth and death in the material world.
और इस प्रकार योनियों के बाद योनि जीवात्मा एक योनि से दूसरी योनि में जाती रहती है, आप आवागमन चलता रहता है।
So now Krishna says, Tasmat tvam indriyam yato niyamya paritarshana papmanam prajahi genam jnana vidyana nashana. Therefore, O Arjuna, best of the Paritas, in the very beginning, curb this great symbol of sin, lust, by regulating the senses, and slay this destroyer of knowledge and self-realization.
तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन जी को उपदेश देते हैं कि वो भरत वंश में सबसे श्रेष्ठ, इसलिए शुरू से ही यह जो एक चिन्ह है जिसको काम बोला जाता है, उसको अपने उस काम को आप अपने वश में रखिए, अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए, और इस प्रकार से यह काम जो हमारी आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ी बाधा है उसको ज्ञान और विज्ञान से नाश, उसको अपने वश में करके रखिए।
The Lord advised Arjuna to regulate the senses from the very beginning so that he could curb the greatest sinful enemy, lust, which destroys the urge for self-realization and specific knowledge of the self. Jnana refers to knowledge of self as distinguished from non-self, or in other words, knowledge that the spirit soul is not the body. Vijnana refers to specific knowledge of the spirit soul's constitutional position and its relationship to the supreme soul. It is explained thus in Srimad Bhagavatam, Jnanam paramaghuhyam me yad vijnana samanditam sa rahasyam tarantam cha brahana paritam maya. The knowledge of the self and supreme self is very confidential and mysterious, but such knowledge and specific realization can be understood if explained with their various aspects by the Lord Himself. Bhagavad Gita gives us that general and specific knowledge of the self. The living entities are parts and parcels of the Lord, and therefore they are simply meant to serve the Lord. This consciousness is called Krishna consciousness. So from the very beginning of life, one has to learn this Krishna consciousness, and thereby one may become fully Krishna conscious and act accordingly. The senses, the Lord says, are troublesome, and therefore one has to control the senses.
तो भगवान कृष्ण अर्जुन जी को समझाते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं ये एक जीव के लिए बहुत सारी परेशानियां लाती हैं, जैसे हमने पिछले श्लोक में समझा। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि आपको इन इंद्रियों को वश में करना चाहिए।
Control the senses doesn't mean stop the senses, it means regulate their activities.
तो इन इंद्रियों को वश करने का अर्थ ये नहीं है कि इंद्रियों की जो एक्टिविटीज है उनकी आदतें उनको पूरी तरह बंद कर देना, पर इसका अर्थ है कि उनको सही रास्ते पे लगाना।
Just the senses require some satisfaction, but that should be regulated.
तो इंद्रियों को भोग की जरूरत होती है, पर ये जो इंद्रियों का भोग है इसको भी नियंत्रण में करना चाहिए।
It's like salt. Too much salt and you can't eat. And too little salt that you also can't eat. So it has to be regulated.
इसका उदाहरण है जैसे नमक। अगर आप नमक बहुत ज्यादा डाल देंगे तब भी आप खाना नहीं खा सकते, और अगर बहुत कम डालेंगे तो भी आप खाना नहीं खा सकते। इस प्रकार से उनको नियंत्रण में रखना चाहिए।
So we don't say stop the senses, but regulate.
तो इसीलिए हम ये नहीं कहते कि इंद्रियों को बंद कर दो या इंद्रियों को खत्म कर दो, पर इंद्रियों को सही रास्ते पे लगाओ।
In the Bhagavad Gita, Lord Krishna gives the example of the tortoise. which can withdraw its arms and legs into its shell.
भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने कछुए का एग्जांपल कछुए का उदाहरण दिया जिस प्रकार एक कछुआ अपने अंग अपने बाहू और अपने पैरों को जब जरूरत नहीं होती है तो अपने शरीर के अंदर खींच लेता है
But the other side of the example is that when necessary the tortoise can extend its senses so when there's a need it extends them and when there's a need it retracts them it has the senses under its control to extend or to retract
दूसरी तरफ जब कछुए को जरूरत पड़ती है तो वो अपने हाथ और पैर बाहर निकाल लेता है तो इस प्रकार जरूरत पड़ने पे वो हाथ और पैर को बाहर निकाल कर उनका प्रयोग करता है और उनको नियंत्रण में रख के वापस अंदर ले जाता है और इस तरह से अपने अंगों को अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है
So one has to control the senses and how adi ado tasmat tvam indriyani ado one has to control the senses from the very beginning
तो अपनी इंद्रियों को वश में रखने का जो साधारण मार्ग वह यह है कि शुरुआत से ही उनको नियंत्रण में करने का प्रयास करा जाए
From the beginning, we can understand in different ways. From the very beginning of life, one should be trained in control of the senses.
तो ये शुरुआत का अर्थ हम भिन्न-भिन्न तरह से समझ सकते हैं। पहला इसका अर्थ यह है कि जीवन की शुरुआत से, बचपन से ही हमारे को इंद्रियों को अपने वश में करने का अभ्यास करना चाहिए।
Brahmachari Gurukule Vasan Danta Gururita. Therefore, in the Vedic system, the children are sent to the Gurukul. The boys are sent to the Gurukul Vasan Danta Gururita. To learn control of the senses, control of the mind.
तो इस जीवन की शुरुआत में वेदों में वर्णित है कि हर बच्चे को पहले गुरुकुल में जाना चाहिए और बचपन से ही किस प्रकार इंद्रियों को अपने वश में करना है गुरु के द्वारा सीख के अपने जीवन में शुरुआत से ये अभ्यास करना चाहिए
Without proper training, the child just becomes another version of the cat or the dog. द्विपद पशु, a two-legged animal.
ठीक तरह से अगर किसी बच्चे को इस तरह का अभ्यास ना कराया जाए तो फिर आगे बढ़कर यह बच्चे एक तरह से पशु के समान हो जाते हैं जिनको वेदों में कहा गया दो पैर वाले पशु
We see so many big, big men who can't control their senses.
जैसे हम समाज में देख सकते हैं कि बहुत बहुत, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति भी अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं
I was seeing not long ago a book about the American Revolution, and they were talking about one of the big generals. And it seems that the general, he was very good during the fighting, he was very capable. But after the fighting, he was addicted to drinking and women and so many things.
So Maharaj is ka udharan dete samjhane ki ek bar Maharaj ne American रेवोल्यूशन वहां की लड़ाई के बारे में जो जब उनको स्वतंत्रता मिली उसके बारे में पढ़ा तो उसने लिखा था कि एक बहुत बड़े मिलिट्री के जनरल थे जो जब लड़ाई चल रही थी तो बहुत बहुत ही शक्तिशाली थे बहुत अच्छे से उन्होंने लड़ाई कराई पर लड़ाई खत्म होते ही वह फिर मद्यपान शराब औरत वैश्या इन सब के चक्कर में फंस गए
So the author commented very rightly that the commander was not in command of himself.
तो जो लेखक थे जिन्होंने पुस्तक लिखी थी उन्होंने लिखा और समझाया इसके अंदर एक पंक्ति लिखी उसका अर्थ यह है कि जो कमांडर मतलब जो मिलिट्री के जनरल थे वो खुद अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाए
So that's a fact. There's so many big, big men. They command the world, but they can't command themselves.
तो ये जीवन की सच्चाई है समाज की सच्चाई है कि बहुत बड़े बड़े व्यक्ति जो पूरी दुनिया को नियंत्रण में करने का प्रयास करते हैं और नियंत्रण में रखते हैं वो स्वयं अपनी इंद्रियों को और अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं
Because they're not properly trained from the beginning of life.
उसका कारण है क्यों कि वह जीवन की शुरुआत से उनको अभ्यास और एक प्रकार का नियंत्रण कैसे इंद्र को नियंत्रण में करना है वो सिखाया नहीं गया.
Therefore, the child should be trained from the very beginning how to control the senses, how to control the mind. This is character.
इसीलिए हर बच्चे को शुरुआत से बचपन से किस प्रकार अपने इंद्रियों को वश में रखना है, मन को वश में रखना है, वो सिखाना चाहिए. और यह है असली चरित्र किस प्रकार बनाने का साधन.
Otherwise, the child becomes victimized by so many material desires and becomes, yes, godas, servant of the senses, servant of lust.
वरना बच्चे बड़े होने के बाद इन इंद्रियों के विषय के भोग करने के चक्कर में फंस जाते हैं और वे इंद्रियां जिनको गो बोला जाता है उसके दास, उनके नौकर बन जाते हैं.
Then jnana vijnana nasha, this calm is described as jnana vijnana nasha. It destroys knowledge and self-realization.
इस प्रकार का जो काम है यह हर व्यक्ति का जो ज्ञान है और विज्ञान है उसको नष्ट कर देता है. काम वासना ज्ञान और विज्ञान को नष्ट कर देती
है. And then the human life is spoiled.
और मनुष्य जन्म उस प्रकार से व्यर्थ और उसका नाश हो जाता है, वेस्ट हो जाता है. विफल मतलब उसका कोई फल नहीं मिल पाता इतने महत्वपूर्ण मनुष्य जन्म.
So from the very beginning of life, one should be trained to control material desires.
इसीलिए जीवन की शुरुआत से हम सबको अपने इंद्रिय भोग की इच्छाओं को वश में करने का तरीका सीखना चाहिए.
And another meaning of ado from the beginning is as soon as it gets started.
पहला अर्थ था कि जीवन की शुरुआत से. दूसरा अर्थ कि शुरुआत का क्या अर्थ है वो है कि जैसे ही ये इच्छा हमारे मन में आए उसको वहीं रोकना चाहिए.
One should be very strict with the senses so that as soon as the mind is proposing some rubbish from the very beginning we cut it.
तो हमारे को अपने मन के साथ बहुत सावधानी से काम करना चाहिए. जैसे ही मन ऐसा कोई परिभाषा या ऐसा कोई सब्जेक्ट हमारे सामने रखे इंद्रियों को करने का हमारे को उसको वहीं पे रोक देना चाहिए.
Otherwise, what happens? It grows.
अगर हम उसको नहीं रोकेंगे तो ये इच्छा और प्रबल होती जाएगी और हमारे लिए मुश्किल बढ़ती जाएगी.
Chanakya Pandit says that one should never neglect death, disease, or fire.
चाणक्य पंडित जी ने कहा है कि कभी भी हमारे को मृत्यु, बीमारी और अग्नि इन सबको बहुत सावधानी से हमेशा सावधानी से इनको देखना चाहिए. कभी इनको छोड़ नहीं देना चाहिए अपने आप में.
मृत्यु नहीं,
डेट तो उसका है कर्जा और अग्नि और
डेट, फायर एंड डिजीज.
बीमारी, अग्नि और कर्जा, इनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, इनको हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए.
Death, if we neglect it, then interest, compound interest, late fees, it becomes unmanageable.
जैसे अगर हम कर्जा किसी से लेते हैं, पैसा लेते हैं, अगर उसको हम नियंत्रण में ना रखें, तो उसका उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता रहता है, वो बढ़ता रहेगा, और हम उसके इंटरेस्ट के दबाव में बिल्कुल फंस जाएंगे.
But in the beginning, if we pay our debt, then it's manageable.
पर अगर हम जल्दी ही शुरुआत में अपना कर्जा उतार दें तो फिर हम उसको नियंत्रण में रख सकते हैं.
Disease also. In the beginning, if we take care of it, then it's an easy matter. Otherwise, if we neglect it, the doctor says, oh, this is very serious. If only we had caught this in the beginning, we could do something.
उसी प्रकार बीमारी, दूसरा उदाहरण चाणक्य पंडित जी का, कि बीमारी भी अगर होती है तो उसको शुरुआत में दवाई कुछ लेके बीमारी को ठीक कर लेना चाहिए. अगर हमने उसको ठीक नहीं करा और बहुत दिनों बाद डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर फिर हमें बोलते हैं कि आपको पहले आना चाहिए था, अगर आप पहले आते तो इतनी बुरी हालत नहीं होती.
And fire, if caught in the beginning, it's very easy to extinguish. Otherwise, it grows, and then who knows?
तीसरा उदाहरण चाणक्य पंडित जी का था अग्नि आग, अगर कहीं आग लग जाती जब तक वो छोटी आग है अगर आप उसको पानी डाल दें तो वो बुझ जाएगी, पर अगर वो अग्नि पूरी तरह प्रज्वलित हो जाए बहुत बढ़ जाए तो फिर आप उसको नहीं रोक पाएंगे, वो सब कुछ तहस नहस कर देगी।
So this tongue is a kind of fire. It should be controlled from the very beginning.
तो ये काम है एक बहुत ही प्रज्वलित अग्नि, अगर इसको हमने शुरुआत में नहीं रोका तो ये काम हमारे जीवन को तहस नहस कर देगा, काम वासना।
So indriyanyado niyamya, the senses should be regulated. How is it possible?
तो इसीलिए इंद्रियों को शुरुआत से ही महाराज ने दो उदाहरण दिए, दो ताप करके समझाएं, उनको नियंत्रण में रखना चाहिए। अब समझाएंगे महाराज कि ये कैसे करना चाहिए।
It's possible by Krishna consciousness.
यह संभव है कृष्ण भावना अमृत से।
We don't say no eating. The tongue wants to taste something, so we just say no meat eating, but take Krishna prasad.
जैसे हमारी जीवा है, जीवा कहती, जीवा को हम ये नहीं कहते कि आप कुछ मत खाइए, हम जीवा को कहते हैं कि आप मांस मच्छी और जो गलत पदार्थ है वो सब मत खाइए, भगवान कृष्ण को चढ़ाया हुआ प्रसाद खाइए।
We then don't say no sense, but no nonsense.
उसी प्रकार ये नहीं कहा जाता कि आप यौन संबंध ना करिए, पर ऐसे अवैध यौन संबंध ना करिए किसी पराई स्त्री या पराई पुरुष के साथ में।
Everything regulated for the service of Krishna.
इसीलिए सब चीजें नियंत्रण में करनी चाहिए केवल भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए।
In this way, how do we control the senses? Should I go into that last verse? No. There's one more verse. Should we finish the chapter?
Yes, ma'am. Okay.
So Krishna said, oh, there's one more. एवं भूते परम भूत्वा संस्थाप्यात्मानं आत्मनः जनि शत्रुं महाभावो कामरूपा दुरासनः। Thus, knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind, and intelligence, Almighty Armed Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus, by spiritual strength, conquer this insatiable enemy of his lust.
इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन जी को अब समझाते हैं कि किस प्रकार से हमारे को इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। उसके लिए वे कहते हैं कि इस प्रकार जानते हुए कि जीवात्मा भौतिक इच्छाओं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति, मन और बुद्धि से ऊपर है, हे शक्तिशाली अर्जुन, अपने मन को स्थिर रखते हुए आध्यात्मिक बुद्धि का प्रयोग करते हुए, जिसको कृष्ण भावना वृत्त कहा जाता है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इस कभी भी ना शांत होने वाली अग्नि समान काम वासना को हमेशा नियंत्रण में रखो।
This third chapter of the Bhagavad Gita is conclusively directed to Krishna consciousness by knowing oneself as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead, without considering impersonal voidness the ultimate end. In the material existence of life, one is certainly influenced by propensities for lust and desire for dominating the resources of material nature. Desire for overlording and sense gratification is the greatest enemy of the conditioned soul. But by the strength of Krishna consciousness, one can control material senses, the mind, and the intelligence. One may not give up work and prescribed duties all of a sudden, but by gradually developing Krishna consciousness, one can be situated in in a transcendental position without being influenced by the material senses and the mind, by steady intelligence directed toward one's pure identity. This is the sum total of this chapter. In the immature stage of material existence, philosophical speculations and artificial attempts to control the senses by the so-called practice of yogic postures can never help a man towards spiritual life. He must be trained in Krishna consciousness by higher intelligence. Thus end the Bhakti-Vedanta purports to the third chapter of the Srimad Bhagavad Gita and the matter of karma yoga, or the discharge of one's prescribed duty in Krishna consciousness. So the lower force is pulling us down. The senses are pulling the mind is pulling the intelligence, and the intelligence is dragging it down the soul.
Oh, you've got it for a second.
Fantastic.
So should I put it down?
Now I'm used to it.
So Maharaj ne bataya ki humne aaj samjha ki jo kamzor cheez hai, jaise Bhagwan Krishna ne pehle shlok mein samjhaya, kamzor cheez indriya woh hai jinko man se niyantrit hona chahiye tha, वो उल्टा हो रहा है. इंद्रिया मन को कंट्रोल कर रही, मन को नियंत्रण में कर रही, मन बुद्धि को, और बुद्धि जीवात्मा जो सबसे शक्तिशाली है उसको नियंत्रण में कर रहा है.
So one has to go the other way. One has to control the senses by the mind, control the mind by the intelligence, control the intelligence by spiritual strength, Krishna consciousness.
पर असली में जो तरीका, एक वास्तविक तरीका होना चाहिए वो यह है कि इंद्रिया मन के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए, मन बुद्धि के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए, और बुद्धि जीवात्मा की आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा बुद्धि नियंत्रित होनी चाहिए.
The mind can be the greatest friend or the greatest enemy. When controlled, when uncontrolled, it's the greatest enemy. And when controlled, it's the greatest friend.
तो महाराज ने एक श्लोक पर भगवत गीता में से एक श्लोक का उच्चारण करा जिसके अंदर समझाया गया है कि हमारा मन हमारा सबसे प्रिय मित्र हो सकता है या हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है. जब ये मन नियंत्रित होता है आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा, तो ये सबसे प्रिय मित्र. और यही मन जब ये इंद्रिय भोग के द्वारा, इंद्रिय भोग की आसक्ति में पूरा विलीन होता है, तो ये सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है.
So how do we make the mind the friend? How do we control the mind? By engaging it in the service of Krishna.
तो मन को अपना मित्र बनाने का एकमात्र तरीका है कि इस मन को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में युक्त करना.
When the mind is directed to Krishna, the mind becomes very happy.
जब मन भगवान कृष्ण की सेवा में लगता है, युक्त होता है, तो अपने आप मन बहुत प्रसन्न हो जाता है.
And it automatically becomes controlled.
और उसके द्वारा बहुत आसानी से मन नियंत्रण में आ जाता है.
We simply have to engage the mind in Krishna's service, and then the mind will not be engaged in other things.
अगर हम अपने मन को निरंतर भगवान की सेवा, भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, तो अपने आप ये जो मन है, इधर उधर नहीं भटकेगा.
That engagement begins with shravanam, kirtanam, hearing and chanting about Krishna.
और भगवान कृष्ण की सेवा, मन को भगवान कृष्ण की सेवा में युक्त करने का सबसे प्रथम स्तर है श्रवण, भगवान के संबंधित ज्ञान सुनना, और भगवान के नाम का उच्चारण जिसको कीर्तन कहा जाता है.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. That will solve the whole problem.
और हरे कृष्णा महामंत्र के उच्चारण करने से प्रेम पूर्वक हमारी जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं.
Any questions? कोई प्रश्न?
अब महाराज प्रश्न, अगर किसी के कोई प्रश्न है तो महाराज वो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए.
में से किसी के कोई प्रश्न, तो निसंकोच आप प्रश्न पूछ लीजिए.
I wonder who's some questions bubbling up there someplace in someone's mind.
किसी का कोई भी प्रश्न है तो पूछ लीजिए. प्रभु का प्रश्न है कि महाराज हम लोग जब ये सुनते हैं तो हमारे को अच्छा लगता है और हम इसको अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं इस नियम को, पर जब हम अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं तो हमें फिर लगता है कि ये बहुत कठिन है, तो हम किस प्रकार इसको अपने जीवन में वास्तविक रूप से अपना सकें.
अभ्यासेन तु कौन्तेयं वैराग्येन च विद्यते संशयं महाभावो मनो दुर्निग्रहः. Krishna says, yes. Arjuna said that trying to control his mind is something like trying to stop a hurricane.
तो यह प्रश्न अर्जुन जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था और उन्होंने कहा था जो श्लोक महाराज ने बोला उसके अंदर कि भगवान कृष्ण अपने मन को नियंत्रण करने का अर्थ है कि जैसे कोई बहुत बड़ा आंधी तूफान आ रहा है और उसको हम कंट्रोल करने का, उसको नियंत्रण में करने का प्रयास कर
रहे हैं. Stop.
तो अगर हम लोग किसी आंधी तूफान आ रहा है बहुत जोर का और उसके सामने भवन के सामने जाके बोलें कि आप रुक जाएं, तो क्या वो रुकेंगे?
So that's Arjuna's question. But Krishna says, "Asamshayam Mahabhava." It's a fact that to control the mind is very difficult.
तो भगवान कृष्ण ने उनकी बात सुनी और कहा, हाँ, यह तुम सच कह रहे हो कि अपने मन को नियंत्रण में करना बहुत बहुत कठिन है.
But it's possible by suitable practice and by detachment.
पर एक तरीका है जिससे आप इसको अपने जीवन में अपना सकते हैं. पहला तो अभ्यास, अपने जीवन में नियंत्रित रूप से अभ्यास करना, और दूसरा वैराग्य, इस प्रकार से इन इंद्रिय भोग की इच्छाओं को दूर रखना.
अभ्यास, practice makes perfect.
जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि अभ्यास करने से कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज में पूरी तरह समर्थ बन सकता है.
By practice, it becomes possible.
अभ्यास करने से यह संभव है.
In the beginning, it may seem very difficult, but by practice, just like music, in the beginning, it seems, how will I learn to play music? But in the beginning, you play some notes again and again, you practice. So you become a very good musician.
जैसे शुरुआत में कोई भी चीज कठिन लगती है, महाराज ने उदाहरण दिया संगीत का. कोई भी व्यक्ति जब संगीत सीखने जाता है तो उसको बहुत कठिनाई होती है, वो सोचता है अरे मैं कैसे बजाऊं, तब अभ्यास करने से एक बार वो एक चीज दबाता है फिर दूसरी दबाता है, पर अभ्यास करने से उसको संगीत के सारे सुर समझ में आने लगते हैं. दूसरा उदाहरण दिया जैसे भाषा, भाषा भी सीखी जा सकती है अभ्यास करने से.
But everything is possible by practice.
तो सभी चीजें संभव हैं अगर हम अच्छे से अभ्यास करें तो.
And this practice of Krishna consciousness is purifying.
और ये जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास है, भगवान की भक्ति का अभ्यास है, ये अपने आप में ही हमारे को स्वच्छ करता है, हमारे हृदय को साफ करता है.
So even if we're very much attached, by chanting the mind becomes purified, then detachment is possible.
तो अगर शुरुआत में हम बहुत ज्यादा हमारी आसक्ति है और बहुत फंसे हुए हैं मोह माया में, पर केवल भगवान के नाम का जप करने से धीरे धीरे हमारा हृदय साफ होता है और ये जो मोह और माया है ये कम होने लगती है.
We become more attached to Krishna.
और धीरे धीरे हमारी असली आसक्ति भगवान के चरण कमल में हो जाती है.
We're losing interest in other kinds of food because we're more attracted to Krishna Prasad.
जैसे हम लोग धीरे-धीरे बाहर इधर-उधर खाने का मन से वो कम होने लगता है क्योंकि हम भगवान कृष्ण के प्रसाद की तरफ हमारा भावना बढ़ती रहती है.
So the more we become attracted to Krishna, the more we lose interest in Maya. And the more we chant Hare Krishna, the more we become attracted to Krishna.
तो जैसे हम लोग भगवान कृष्ण की भक्ति में लगेंगे वैसे माया से हमारा संबंध कम होता जाएगा और इसी प्रकार भक्ति करने से हमारे को माया से हम दूर रह सकते हैं.
Rupa Goswami advises that we shouldn't become disappointed. We should just carry on with enthusiasm and patience and determination in good association of devotees and family.
Rupa Goswami ji has explained to us that we should not be disappointed. Utsaha, nishchay, dhairya and bhakton ke samuh mein, achhe bhakton ke saath rehkar hamara yeh abhyas chalu rakhna chahiye. और कोई दूसरा प्रश्न?
By yoga? By yoga, can we control the senses? By yoga, you mean by sitting postures and pranayama and these things? Yes, it's possible to control the senses by asana, pranayama, and so on, but that's very difficult. Even great yogis like Vishwamitra Muni practiced that system and still ran into problems.
तो अगला प्रश्न ये था क्या-क्या हम योग करने से अपने इंद्रियों को वश में रख सकते हैं? महाराज ने उत्तर दिया हाँ आप वश में इंद्रियों को रख सकते हैं जैसे आसन प्राणायाम करके अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं पर आज की स्थिति में इस कलयुग में इस शरीर के द्वारा ये करना बहुत कठिन है. पहले के युगों में कई ऋषि मुनि ये करते थे पर ऐसा करने के बावजूद भी बड़े बड़े ऋषि जैसे महाराज ने उदाहरण दिया विश्वामित्र इतना योग आसन करने के बाद भी वे इंद्रिय भोग और काम वासना के शिकार हो गए.
The yoga of asana, pranayama, pratyahara and so on is mechanical. It's a mechanical system.
तो ये एक तरह का मैकेनिकल मतलब एक तरह का अभ्यास है जिसके अंदर योग आसन प्राणायाम और ये सब करा जाता है.
In previous ages, the yogis very seriously practiced this system, and they were so capable of controlling the body that they could stop their breathing.
पहले के युगों में ऋषि मुनि बहुत समर्थ होते थे क्योंकि वो बहुत दृढ़ निश्चय के साथ इन आसन प्राणायाम का अभ्यास करते थे इतने समर्थ होते थे कि वो अपनी श्वास को भी पूरी तरह रोक पाते थे.
That was the perfection of pranayama, that they would equalize the breath, offering ingoing to the outgoing, outgoing to the ingoing, until it remained in equilibrium, and then they didn't have to breathe.
तो प्राणायाम का जो सर्वोत्तम स्थिति है वो ये है कि एक योगी अपने श्वास को पूरी तरह रोक देता है अंदर लेने वायु को बाहर से और बाहर को अंदर से इस प्रकार का संतुलन बनाकर उसको दोबारा श्वास लेने की जरूरत नहीं पड़ती.
Then they could absorb their mind in trance on the Paramatma.
और इस प्रकार अपने मन को नियंत्रण में जब अपनी वायु को नियंत्रण में कर ले तो मन ने मन को नियंत्रण में करके वो परमात्मा के साथ और इस प्रकार वह सर्वोत्तम स्थिति प्राप्त कर पाते.
But who among us is going to do that?
पर क्या हम में से कोई इस प्रकार से समर्थ है कि इस प्रकार का आसन प्राणायाम कर सकते हैं?
But this is the direct then to chant Hare Krishna and directly fix the mind on Paramatma. Krishna is the Paramatma, the perfection. So one can chant Hare Krishna and the mind, Krishna and his name are the same. The mind is immediately there with the Paramatma.
तो सबसे सरल और सीधा रास्ता परमात्मा को प्राप्त करने का है भगवान कृष्ण के नाम में. भगवान कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अलग नहीं है. अगर हम अपने मन को और अपने इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो जो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है जो आदि परमात्मा है उनके साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं.
So this kirtan is the yoga method which is more powerful and more appropriate for the present age.
तो इस युग के अंदर ये जो कीर्तन करना, भगवान हरि के नाम का कीर्तन करना, यही सबसे अच्छा साधन है भगवान की प्राप्ति करने का।
और प्रश्न?
Most of the people in India are all demigod worshippers.
What will happen after their death? So,
what happens to them after their death?
Yes, all mostly Shiva's devotees.
Most of the people are demigod worshippers. Actually, I'm not sure. I think statistically, there's more Vishnu worshippers than anything else.
So, Rajendra Prabhu's question is that Maharaj, the people in Bharat, they do devi devtaon ki puja karte hain. इनका प्रश्न था कि ऐसे व्यक्ति जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनका जीवन देह हाथ के बाद में उनका उनकी क्या गति होगी। तो महाराज ने शुरुआत करी कि महाराज के अनुसार शायद अगर ज्यादातर देखा जाए तो देवी देवता से ज्यादा ज्यादातर विष्णु भगवान के आराधना करने वाले हैं भारत के अंदर।
But the question still remains, what happens to those people?
पर आपका प्रश्न सही है। प्रश्न का यह अर्थ है कि ऐसे जो देवी देवताओं की पूजा करने वाले व्यक्ति हैं, उनका इस जन्म के बाद मृत्यु के बाद में क्या गति होती है, वो कहां जाते
हैं। कृष्ण says yanti deva vrata deva, those who worship the devas go to the abodes of the devas.
तो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के अंदर इसका उत्तर दिया श्लोक का जो महाराज ने उच्चारण करा कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, वह लोग उन देवी देवताओं के लोग उनकी जगह उनके स्थान पे जाते हैं इस शरीर के बाद।
याति देव वृता देवान पृथ्वीन याति पृथ्वी वृता भूतानि याति भूतेजा याति याति भाग्या जनोपिमा। Those who worship the devas and the devas go to the devas. Those who worship the pitris go to the pitris. Those who worship the bhutas go there. And those who worship me, Krishna says, come to me.
तो भगवान कृष्ण ने श्लोक के अंदर कहा कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के लोग में जाते हैं। जो लोग अपने पूर्वज जिनको पितृ कहा जाता है उनकी पूजा करते हैं, वैसे वो पितृ लोक में जाते हैं। उसी प्रकार जो लोग भूतों की पिशाचों की से पूजा करते हैं, वो लोग उनके लोक में जाते हैं जहाँ भूत पिशाच रहते हैं। और अंत में जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे पास वापस आते हैं।
Not that whoever you worship, you get to the same place.
पर ऐसा कहीं नहीं लिखा शास्त्रों में कि आप किसी को भी पूजा करिए पर आपकी गति एक ही और आप एक ही के पास पहुंचेंगे, ये शास्त्रों में नहीं लिखा है।
Prabhupada used to give the example of a ticket. If you're in Delhi and you buy a ticket for Bombay, that will not take you to Calcutta.
तो शिला का उपाय उदाहरण देते थे कि अगर आप दिल्ली से बंबई जाने की टिकट लेते हैं गाड़ी की ट्रेन की, तो वो ट्रेन आपको कलकत्ता नहीं पहुंचाएगी, वो आपको बंबई ही
पहुंचाएगी।
उसी प्रकार अगर आप कलकत्ता की टिकट लेते हैं तो वो आपको बंबई नहीं
पहुंचाएगी।
पर आज के समय में लोग इतने मूर्ख हैं भगवद गीता का ज्ञान ना होते हुए कि वो सोचते हैं कि मैं कोई भी टिकट लूं, किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करूं पितरों के लिए और देवी देवताओं के लिए, पर मैं तो सीधा सर्वोत्तम भगवान के पास पहुंच
जाऊंगा।
पर भगवान कृष्ण ने कहा केवल वह लोग जो भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं भक्ति करते हैं केवल वही उनके पास में
आते हैं
और बाकी लोग अलग जगह पे जाते हैं जो उस श्लोक के अंदर समझाया गया।
Apart from that, yanti deva vrata deva, yanti deva vrata devan, those who very seriously worship the devas go to the devas.
और इस श्लोक के अंदर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कोई देवी देवताओं के पास नहीं पहुंच पाता उनके लोग में, केवल वह है जो बहुत दृढ़ता से सब नियमों का पालन करते हुए देवी देवताओं की पूजा करते हैं शास्त्रों के अनुसार, केवल वह उनके लोक में जाते हैं, हर कोई नहीं।
We know of people who very seriously worship Lord Shiva or very seriously worship Devi. They're Shiva bhaktas, Devi bhaktas. Their whole life is for that. As our life is for Krishna, they're giving their life for such and such Deva.
तो महाराज के संपर्क में ऐसे भी लोग आए हैं जो देवी की पूजा के लिए बहुत दृढ़ता से नियमों के अनुसार शास्त्रों के अनुसार पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, या शिव भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। और हम लोग जिस तरह हम भगवान कृष्ण के अपना जीवन समर्पित करते हैं
so they go to these temporary places of the devadas
तो ऐसे व्यक्ति इन देवी देवताओं का देवी का स्थान और शिव जी का जो स्थान है जो जो जिसका अंत हो जाता है ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं
Ever Krishna says, Antadaptu Palam Pesham, Tadpadat Yalpavayas, and they're less intelligent, Krishna says.
But aise vyaktiyon ko Bhagavan Krishna ne Bhagavad Gita ke andar kaha hai ki woh log bahut zyada buddhiman nahi hain kyunki
But those who think that, who are simply engaged in a life of sense gratification, and then sometimes they do Devi Puja, Durga Puja, Shiva Puja, they're not going anywhere.
But, क्योंकि महाराज ने समझाया पर ऐसे लोग जो वैसे तो निरंतर अपनी इंद्रियों भोग में लगे हुए हैं सब तरह के बुरे काम करते हैं पर बीच बीच में केवल एक दिन देवी की पूजा कर ली भगवान शिव की पूजा कर ली वो लोग कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे उनकी गति बहुत अधिक होती है
They're not actually Devi Bhaktas or Shiva Bhaktas, they're Indriya Bhaktas.
वास्तविक रूप में ऐसे लोग देवी के भक्त या भगवान या शिव जी के भक्त नहीं है वो केवल अपने इंद्रियों के भक्त हैं
so they go to degradation
तो ऐसे लोग अधोगति मतलब वो नीचे के नीचे गिरते हैं प्रश्न है कि कृष्ण भावना में थे कृष्ण भक्त पूरे दुनिया में उनका कितना नंबर है कितना परसेंटेज है
मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यत् विद्यते कृष्ण says out of thousands of men even one just one attains spiritual realization not Krishna consciousness but he understands aham brahmasmi I'm not this body I'm spirit soul life is meant for spiritual realization Out of thousands who are working for sense gratification, one person attains that perfection.
तो इसका उत्तर भी भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा इस श्लोक का जिसका महाराज ने उच्चारण किया वहां भगवान कृष्ण ने कहा कि हजारों में से केवल एक व्यक्ति होता है जिसके अंदर आध्यात्मिक जीवन की इच्छा होती है ज्यादातर लोग इंद्रिय भोग की इच्छा में है पर एक व्यक्ति हजारों में से होगा जो आध्यात्मिक जीवन के लिए उत्सुक होता है अहम ब्रह्मास्मि अपने आप को जानना चाहता है
And Krishna says, Yatatam api siddhanam kashchinam deiti tatpata. And out of thousands of them, maybe one person will understand it.
Hazaron indriya bhog karne wale se aise ek vyakti jo ichha rakhta hai apne aap ko janne ki aur aise hazaron log jo ichha rakhte hain apne aap ko janne ki aap soch sakte hain kitne durlabh hain usme se ek honge jo aage badh pate hain
so statistically the number is small
to agar statistics dekha jaye तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में युक्त होना चाहते हैं वो बहुत 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 कम है
Just like those who are buying you know costume jewelry plastic jewelry their number is big
तो महाराज ने उदाहरण दिया जैसे कि जो आर्टिफिशियल डुप्लीकेट जो माल मिलता है आभूषण मिलते हैं सस्ते वैसे खरीदने वाले आपको हजारों लोग मिलेंगे
And those who are buying diamonds they're small in number
पर ऐसे व्यक्ति जो हीरा खरीदने के लिए जाते हैं वैसे लोग बहुत बहुत कम हैं
But it doesn't mean we should all everyone's buying plastic but we also buy plastic
पर हमारे को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हर कोई अगर प्लास्टिक खरीद रहा है तो हम भी जाके प्लास्टिक और आर्टिफिशियल गहने खरीद लें
For the valuable commodity the purchasers will always be fewer
किसी भी बहुमूल्य चीज को खरीदने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे
So we don't mind being in the minority.
तो इसीलिए हम लोगों को कोई दुख नहीं है एक minority या कम संख्या में होने का.
The fools are always in the majority.
मूर्ख लोग हमेशा ज्यादातर मिलेंगे.
Oh, fools in the majority, then I should also be a fool.
पर एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने सारे मूर्ख हैं तो चलिए मैं भी मूर्खों के रास्ते में चलता हूँ और कोई प्रश्न
प्रभु ने प्रश्न पूछा कि अब हम लोग भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, जैसे महाराज ने बोला हरि नाम करिए, भगवान के नाम का जप करिए, तो मैं जप कर रहा हूँ, पर अगर मेरी कमजोरी की वजह से मेरा अभ्यास पूरा ना हो पाया और मैं अपने हृदय को पूरी तरह साफ नहीं कर पाया तो मेरा मेरी क्या गति होगी और मेरा क्या अंत होगा. सो प्रभु इज आस्किंग दैट नाउ I have taken up to the process of Krishna consciousness and under the direction of devotees, I am chanting the holy names of the Lord. But given my own shortcomings, if I am not able to perfect my life and purify my existence, then what result will I attain if we attain at the end of this life?
That's answered in the 6th chapter. Krishna says, whatever good you do will never be lost.
So, छठे अध्याय के अंदर भगवान कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर दिया और भगवान कृष्ण ने कहा कि आप भक्ति के अंदर जो भी प्रयास करते हैं वो कभी नहीं होता.
नेहा विक्रमनाशो स्थिर प्रत्यवायो विदिते. But whatever gain you make in this life, that's your permanent credit. In the next life, you continue.
तो भक्ति में हम जो भी प्रयास करते हैं, थोड़ा सा भी अगर आगे बढ़ते हैं, तो वो कभी हम पीछे नहीं रखते. इस जीवन के बाद जो अगला जीवन होगा हम उसके अंदर उसी स्तर से और ऊपर आगे बढ़ने का बढ़ सकते हैं.
In this life you make 20% progress, next life you can start from 21. If 80% then 81.
तो अगर इस जीवन में हम 20% अपने जीवन को सुधार पाते हैं, भक्ति के अंदर 20% बढ़ पाते हैं, तो अगले जीवन में हम 21% से आगे बढ़ सकते हैं. अगर 80% तक पहुंचते हैं तो हम 81% से आगे बढ़ सकते हैं.
So we reach the final point.
जब तक हम अपने जीवन को पूरी तरह 100% सफल ना बना लें.
But Srila Prabhupada used to advise that in this life finish it up.
पर शिला प्रभुपाद हमारे को निर्देश देते थे, आदेश देते थे कि इसी जीवन के अंदर पूरी तरह 100% अपने जीवन को सफल बनाइए और भगवान के धाम वापस जाइए.
We take up the process, we can be surprised how much progress we can make.
हम वास्तविक में देख सकते हैं कि अगर हम कृष्णा भक्ति आरंभ करते हैं, भगवान का नाम जप करना शुरू करते हैं, तो हम देख सकते हैं कितना जल्दी हमारे जीवन के जो विकार हैं, गलत चीजें हैं, जल्दी जल्दी दूर होती हैं और हम भगवान के पास कितना जल्दी आगे बढ़ पाते हैं.
Anything else?
One more question.
One more. Okay.
जैसे हम यहाँ पे प्रचार के लिए प्रश्न के लिए सब जगह जा सकते हैं, कोई बात नहीं, किसी भी रूम में घूमते पैसे जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रश्न ऐसा है कि जो घर पे जाते, जैसे मैं घर पे गया, हमारा छोटा सा सफर है, छोटा दुनिया में मदर है, कभी कभार झगड़े होते हैं, कभी कभार पैसे के लिए कुछ बात होती है, या हो सकता है मैं कभी कृष्ण भक्ति के लिए गया, वापस आया कुछ बात हो जाती, जैसे आप लेट क्यों आए या हर चार दिन में क्यों जाने का. अगर मैं अपने कृष्ण भक्ति में लगा हुआ, परिवार भी लगा हुआ, सब कुछ लगा हुआ, लेकिन मेरे को ऐसा अंदर से लगता है कि कृष्ण के प्रति मेरे को दुख है, मतलब अच्छा काम करके आने के बाद ऐसा दुख होता है कि घर में ऐसा अच्छी भरी बात क्यों होती है, इसके कोई निवारण है जिससे मैं परिवार को भी समझा सकूँ या फिर उनको कुछ कह सकूँ, देने में भी समझा पा रहे उनको समझते हैं, इसके लिए ऐसी बात होता है जो घर पर जाकर उनको भी समझा सकूँ सकते हैं.
तो प्रभु का प्रश्न है कि हम लोग जब भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार करने के लिए, भगवत गीता का प्रचार करने के प्रयास करते हैं, तब भी कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमारे घर वाले सहयोग नहीं देते हैं. हम लोग प्रभु ने बोला जैसे अगर वो बाहर जाते हैं प्रचार करने, कई बार ऐसा होता है वापस आते हैं तो घर वाले दुखी होते हैं, कहते हैं कि आपको बार बार जाने की क्या जरूरत है, आप घर पर क्यों नहीं रहते. तो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई सोल्यूशन, ऐसा कोई निवारक है जिससे परिवार वाले भी इनकी स्थिति को अच्छे से समझ सके और पूरे परिवार में कभी ऐसे परेशानी ना आए जिससे भगवान की भक्ति करते समय इनको दुख लगे कि ऐसी परेशानी क्यों आ रही है. सो महाराज इज आस्किंग, प्रभु इज आस्किंग दैट समटाइम्स व्हेन ही गोज आउट फॉर प्रीचिंग ही एनकाउंटर्स व्हेन ही कम्स बैक होम
the family is displeased, or they say, why do you go out so often? So while they are also trying to engage in Krishna consciousness, and he's trying to engage at a faster pace, but what can he do to make sure that while preaching and while engaging with Krishna consciousness, the family remains pacified and does not get agitated?
Take a medium.
तो महाराज ने उत्तर दिया, आप अगली बारी जहाँ पे भी प्रचार करने के लिए जाएं, अपने परिवार को अपने साथ लेके जाएं। परिवार वाले पूरी तरह सहयोगी ना हो तो जब प्रचार करने के लिए जाए तो वहां पे जाके भी वो झगड़ा करें या लड़ाई करें तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? What should
we do? I understood that the family was a little favorable, just their, you know, not 100% enthusiastic.
तो महाराज ने प्रश्न ये समझा था प्रभु का कि इनका परिवार सहयोगी है, भगवान की भक्ति है, तो जब परिवार सहयोगी है पर पूरी तरह कभी सहयोग नहीं हो पाता, इसलिए महाराज ने कहा कि साथ में लेके जाएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और परेशानी नहीं होगी, पर अगर स्थिति अलग है तो उसके लिए दूसरा उत्तर रहेगा।
Otherwise, you can't please everyone.
और दूसरी स्थिति जो आपने बताई उसके अंदर हमें समझना चाहिए कि हम हमेशा हर एक को खुश नहीं रख सकते।
But anyway, we tried, and come on, it's a family picnic.
पर तभी हमें प्रयास करना चाहिए अपने परिवार वालों को कि भगवान की भक्ति में युक्त करने का, और हम उनको बोलते हैं चलो आज हम लोग परिवार के साथ पिकनिक के लिए चल रहे हैं प्रचार करने के लिए।
Otherwise, when we have some work to do, then somehow or other we have to pacify the family members. Okay, I have to go. I have some meeting. I have to go. I have some work I have to do. I have this, and so you have to stay back and manage.
जैसे कई बार हम लोगों को अगर कोई काम रहता है, कुछ अपना रोजगार का काम रहता है, तब भी हम लोग अकेले जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, इतना समय लगाते हैं, उसी प्रकार आपको अपने परिवार को समझाना चाहिए कि वो ज्यादा परेशान ना हो और आप दूसरे काम के लिए बाहर गए, उससे उनको परेशानी नहीं होनी
चाहिए।
उसको फैमिली पॉलिटिक्स कहा जाता है।
But finally we have to see what is more important. There, for higher causes, people neglect their families. When the country is attacked, so many young men join the army.
जैसे महाराज ने उदाहरण दिया, जब किसी देश के ऊपर दूसरा देश अटैक करता है तो बहुत सारे यंग लोग, बहुत सारे युवा अपने परिवार पत्नियों को छोड़ के लड़ाई करने के लिए जाते हैं।
And the mother says, please don't go. The wife says, please don't go.
माता बोलती है कि बेटा मत जाओ, पत्नी बोलती है अपने पति को कि आप मत जाइए।
And he says, I have to go. My country is calling me.
पर पति और पुत्र कहता है कि नहीं माँ, पत्नी मेरे को जाना है क्योंकि मेरा देश मेरे को बुला रहा है।
And that's just the country, which is just a piece of dirt with a flag on it.
और यह तो केवल एक देश के लिए भावना होती है, जो केवल एक मिट्टी है जिसके ऊपर आज हम लोगों ने अलग-अलग तरह के झंडे लगा दिए।
But it's perceived as a higher purpose. So for the country, we put aside our family takes second place.
और इस तरह की मिट्टी जिसके ऊपर झंडे लगाए हैं, उसको हमें उच्चतम का मानते हैं, उसके लिए कई लोग अपने परिवार को छोड़कर लड़ाई के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं और जाते हैं।
Then what to speak of the highest service, spreading Krishna consciousness and serving Krishna.
तो इसी दृष्टि में अगर आप समझें कि कि जो सर्वोत्तम जीवन का लक्ष्य है, सर्वोत्तम कार्य है जीवात्मा का, भगवान कृष्ण की भक्ति और भगवान कृष्ण का प्रचार, क्या आपको नहीं लगता कि उसके लिए भी हमारे को कई बार अपने परिवार को भूल जाना चाहिए?
Ideally, husband and wife together will spread Krishna consciousness.
अच्छी परिस्थिति तो ऐसी है कि धर्म पत्नी और पति दोनों मिलकर भगवान की भक्ति करें और भगवान की भक्ति का प्रचार करें.
Otherwise, we try to manage. I have some work and you have some work, and let us both do what we have to do.
अगर वो नहीं हो सकता तो हमें करना चाहिए कि किसी तरह उनको समझा के कि मेरा कुछ काम है, मेरा कुछ कार्य है, आप अपने स्थिति को मैनेज करिए, अपने स्थिति को नियंत्रण में रखिए.
Otherwise, finally, you may like it or not like it, I have to do it.
और तब भी अगर स्थिति नहीं सुधर पाती है और आपके अंदर दृढ़ निश्चय है तो आपको फिर कहना चाहिए कि आपको अच्छा लगे ना लगे, मैं तो जा रहा हूँ.
Otherwise, because I'm not going, because I'm going out, my wife is unhappy. I'm going out for prachar, so the wife is unhappy.
पर ऐसी स्थिति कि मैं केवल बाहर, कई बार ऐसा होता है बाकी सब चीज के लिए जान देंगे, पर जब प्रचार करने की बात आई कि मैं भगवान की भक्ति के लिए प्रचार करने जा रहा हूँ तो उसी समय पत्नी दुखी होकर बैठ जाएगी.
Otherwise, I stay home and the wife will be unhappy. You're always sitting around the house, you're doing, why did you do this, why did you do that, you don't love me. So if she's going to complain anyway, better to go out, then you don't have to hear it.
तो जब पत्नी इस तरह से लड़ाई करने ही वाली है, हमेशा तिरस्कार करने ही वाली, तो इससे अच्छा है कि बाहर जाए जहाँ पे सुनना ना पड़े. और कोई प्रश्न? तो इनका प्रश्न है कि शुद्ध नाम, भगवान का शुद्ध नाम महामंत्र का जप किस प्रकार करें?
How do you chant Hare Krishna purely? By avoiding 10 offenses.
तो दस नामों ना अपराध से दूर रह के, दस नाम अपराध ना करने से हम शुद्ध नाम का जप कर सकते हैं.
You've seen the list. There are 10 offenses to avoid in chanting Hare Krishna. In the beginning we say just please chant Hare Krishna. But there are 10 kinds of apradhas to be avoided. So you can get that list to.
जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर शुक्रवार के दिन में ये 10 नाम अपराध का उच्चारण करते हैं भगवान के नाम का जप करने से पहले, तो इस नाम अपराध से हमें को दूर रहना चाहिए, इसके द्वारा हम शुद्ध नाम करते हैं. पर शुरुआत के अंदर केवल कहा जाता है कि किसी भी प्रकार से आप भगवान के नाम का जप कम से कम करिए.
शुद्ध नाम मतलब अपराध के बिना.
सो प्योर चैंटिंग ऑफ प्योर होली नेम मींस अवॉइडिंग ऑफेंसेस, अवॉइडिंग द 10 ऑफेंसेस. और कोई प्रश्न? हाँ जी, एक बार पीछे.
इस तरह के डिफरेंस बिटवीन हरे कृष्णा एंड रिवर्ड और तमिलिस या कृष्णा.
बिटवीन हरे कृष्णा एंड व्हाट?
दुबई. There is one temple in Kerala.
Oh, Kerala.
Yeah, Guruvayur. Ah. There also the Krishna.
So Guruvayur up in this Krishna.
Yeah, yeah. It's all same.
Same.
Nothing different.
Nothing different. Krishna is Krishna.
And when we go inside, we can see Vigneshwar and so many Bhagavan inside. And everybody is praying all the words there.
No. Guruvayur, in Guruvayur, they're worshipping Guruvayur.
But he's still inside another small god, Vigneshwar.
Yeah, maybe others are there. They're just, you know, like you go to meet the president, so the ministers are there or the secretaries are there.
तो इनका प्रश्न था कि क्या भगवान कृष्ण और केरला के अंदर जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जिसको गुरुवायूर कहा जाता है, जहाँ पर गुरुवायूर अप्पन जी की आराधना होती है, पूजा होती है, क्या इन दोनों में कोई अंतर है? तो महाराज ने उत्तर दिया, नहीं, कोई अंतर नहीं है. कृष्ण तो कृष्ण है, गुरुवायूर अप्पन कृष्ण है, इनमें अंतर नहीं है. उसके बाद इनका दूसरा प्रश्न था, पर अब जब हम गुरुवायूर में जाते हैं मंदिर में, तो वहाँ पे भिन्न भिन्न तरह के भगवान हैं, विघ्नेश्वर जी, गणपति जी, इनका भी मंदिर है,
तो महाराज ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मेन मंदिर भगवान कृष्ण का। पर उन्होंने कहा फिर कि नहीं, हम जब जाते हैं तो लोग अलग अलग लोगों की अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और सबको एक समान मानते हैं। तो महाराज ने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं है, वहां पे गुरुवायु के अंदर एक ही राजा है, एक ही है, वो है गुरुवायु रंपम। जैसे किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से आप मिलने जाते हैं, प्रेसिडेंट से, तो प्रेसिडेंट के साथ में उनके बहुत सारे मंत्री रहेंगे, उनके सचिव रहेंगे, वो आसपास घूमते रहते हैं, उनसे आप मिलते हुए जाते हैं, पर प्रेसिडेंट केवल एक रहते हैं और वो है गुरुवायु रंपम।
समझ गए?
तो इन्होंने प्रश्न पूछा कि कई बार हम लोग किसी के पास जाते हैं और उनको भगवत गीता का समझाने की कोशिश करते हैं, भगवान के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोग पहली बात तो बात ठीक से सुनते नहीं है और अपना काम जल्दी में करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, लोग भगवान के बारे में क्यों नहीं सुन रहे? हमारे इस क्वेश्चन में that sometimes when we go out to preaching, when we tell some near one, a friend or a relative, why don't they accept the Supreme Personality of Godhead? Why don't they understand the subject matter?
Mama Maya Duracaya. Krishna says, my illusory energy is very strong. So it's not surprising.
So, Maharaj ne kaha, ye bahut aashcharya hone ki baat nahi hai. Bhagwan Krishna ne ek shlok ke andar hi samjhaya, Mama Maya Duracaya. कि भगवान की जो शक्ति है माया, यह बहुत ही शक्तिशाली है, तो अगर उसके प्रभाव में कोई भगवान के बारे में नहीं समझ पाता तो ये कोई आश्चर्य होने की बात नहीं।
This is the world of Maya, so it's not surprising.
क्योंकि यह जो जगत है, यह माया जगत है, तो अगर इस माया के प्रभाव में कोई भगवान को नहीं मान रहा तो उसमें आश्चर्य की बात नहीं।
But we'll make the attempt, and that is so many, someone will take it.
पर हमको प्रयास करना चाहिए और कोई ना कोई जरूर कृष्ण भावना मृत को जरूर
Maybe my family members, they're the closest ones. I approach my family members. I say, please take this, please chant Hare Krishna. And they're not interested.
जैसे हमारे सबसे प्रिय होते हैं हमारे परिवार वाले, और आप जब परिवार वालों को बोलते हैं कि आप भगवान कृष्ण की भक्ति करिए, तो कई बार ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि नहीं, हमारे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं।
I may go to my friends, they may not be interested. But it's a big world, somebody will be interested. Just you're interested, there must be more like you.
Maharaj, to understand this gross material element, like you said, this gross element from the senses, visible senses and the sense objects. So these are at least visible. Whereas mind and intelligence, when you say mind, intelligence, it falls into this subtle aspect. How to understand what's the difference between mind and intelligence? Subtle aspect.
इनका प्रश्न है कि आज जो हमने बात करी अलग-अलग स्तर पे, उसमें इंद्रिय भोग करने के विषय जो जड़ पदार्थ हैं वो समझना हम देख सकते हैं, इंद्रियों को भी हम समझ सकते हैं, जीवा आप इन सबको समझ सकते हैं, पर मन बुद्धि और अहंकार इसको हम कैसे समझ पाए, इसको हम कैसे देख
पाए?
तो महाराज ने कहा केवल देखने से सब कुछ नहीं हो जाता है।
Have you seen the wind?
क्या आपने वायु को देखा है?
Is it there? When the wind is blowing, who when trees are swaying, you know the wind is there. You can't see it.
So, जैसे महाराज ने प्रश्न पूछा कि आप वायु को देख सकते हैं, तो उत्तर दिया नहीं। तो महाराज ने कहा इसका अर्थ है कि केवल देखने से सब चीज समझ में नहीं आती। जब वायु बहुत जोर से आंधी आती है तो पेड़ पौधे हिलते हैं, आप वायु को नहीं देख सकते पर उसका जो प्रभाव हो रहा है पेड़ पौधों पे उसको आप देख सकते हैं।
Everyone can see the actions of the mind and if you read third canto of Srimad Bhagavatam, Lord Kapildev very precisely analyzes what are the symptoms of the mind, what are the symptoms of the intelligence, what are the symptoms of the bhautiko, what are the symptoms of all the elements of the material world.
तो उसी प्रकार जिस प्रकार वायु का प्रभाव हम कोई पौधों पे देख सकते हैं उसी प्रकार मन बुद्धि और अहंकार का प्रभाव भी हम समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए महाराज ने कहा हम सबको श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद पढ़ना चाहिए जिसके अंदर कपिल देव भगवान जी ने यह समझाया है कि मन किस प्रकार से प्रभाव डालता है, बुद्धि किस प्रकार से प्रभाव डालती है और अहंकार के क्या लक्षण और किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, ये उन्होंने बहुत अच्छे से विस्तार में एक एक करके समझाया है। तो भागवतम के अंदर सब कुछ है उपस्थित है समझने के लिए।
Hare Krishna. To you, all the devotees, we have the complete trust in Lord Krishna. But sometimes we face some people, they are asking, Krishna is a person.
Krishna is a man.
So how a man can become Supreme Lord? So how to answer him?
इनका प्रश्न है कि इनको भगवान कृष्ण के ऊपर कृष्ण भगवान है इनको पूर्ण विश्वास है पर कई बार इनसे कोई लोग प्रश्न पूछते हैं कि देखिए ये जो कृष्ण है ये भी एक आदमी थे एक मनुष्य थे तो अब आप किसी मनुष्य को भगवान कैसे बोल सकते हो ये प्रश्न पूछते हैं इनसे तो ये जानना चाहते हैं महाराज जी से कि ऐसे प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए ऐसे व्यक्तियों को।
And you've got one wife, and it's a big problem for you.
तो महाराज ने उत्तर दिया, आप पुरुष हैं, आपकी एक ही पत्नी है, और ये आपके लिए बहुत परेशानी का विषय है।
How to manage everything?
कि किस प्रकार से मैं सब चीजों को संभाल के रखूं?
Krishna has 16,000 wives, and it's everything's going on nicely, so he must be God.
पर कृष्ण की 16,000 रानियां हैं, पत्नियां हैं। पर उसमें उनको मैनेज करने में उनको नियंत्रण में रखने में कोई परेशानी सब कुछ बिल्कुल सफल और अच्छे से चल रहा है इसलिए वो एक उत्तर है। और कोई प्रश्न So she worships everyone. So what would be the result that she will achieve by such worship?
Well, at least one day you're worshiping Krishna.
तो महाराज ने कहा चलो अच्छी बात है कि कम से कम आप एक दिन तो भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं।
But your program is something like this: one day you're watering the root of the tree, the next day you water this leaf, the next day you water that leaf, the next day you water this leaf.
तो आप जिस दिन भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं उनकी पूजा कर रहे हैं उस दिन आप पेड़ की जड़ में पानी दे रहे हैं और बाकी दिन जिस दिन आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं उस दिन आप पेड़ के ऊपर लगी लगी शाखाएं और पत्ते हैं उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा जड़ डाल रहे हैं।
You can't worship all the devotees. There's how many crores. So you're worshiping a few, but they're all part of Krishna. So you're pouring water on the leaves, but when you pour water on the root, it's distributed to all the leaves, all the branches, everywhere.
वास्तविक रूप में अगर देखा जाए आप सभी देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो आप कैसे सबको प्रसन्न कर पाएंगे। पर जिस दिन आप भगवान कृष्ण, अगर आप भगवान कृष्ण की सेवा करें, जड़ के अंदर जो पेट की जड़ है उसमें अंदर जल डालें, तो अपने आप ये जल सभी देवी देवताओं के पास भी पहुंचे कि देवी देवता भगवान के ही सेवक और उनके अंग, तो वह रास्ता सही रास्ता है।
You have when you eat, so suppose one day you put food in the mouth, the next day you put it in the ear, the next day you put it on the top of your head.
अगर जैसे आप खाना खाते हैं, खाना लेते हैं, तो एक दिन आपने मुंह के अंदर खाना डाला, दूसरे दिन अगर आपने कान पे डाला या सर पे डाला, तो उससे क्या होगा?
You don't have to separately feed your ear and your nose and your hand and your leg. You just put the food in the stomach, it will be distributed.
So aapko sharir mein alag alag bhagon ko poshtikta dene ke liye uske andar dalne ki zarurat nahi, keval agar aap food ke andar dale aur aapke pet mein jayega to pet poorn tarah sabko poshtikta sare logon ko poshtikta dega. So she's asking, does this mean that she need not worship any other demigod? And does this mean that simply by worshipping Lord Krishna, she will achieve all the results?
Yes.
Maharaj ka uttar hai, haan.
Therefore Krishna says, Sarva Dharmantra Stitra Mame Kamshadra. You can put aside everything else and just worship me.
और यह उत्तर भगवान कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता श्रीमद भगवत गीता के अंदर दिया आखिरी अध्याय के अंदर, जिसमें उन्होंने बोला कि आप सब धर्मों को छोड़कर सर्वथा सर्वधर्म परित्याज्य, तो सब धर्मों को छोड़कर केवल भगवान कृष्ण की पूजा में लग जाए।
चलो ओके,
क्या आप
इट्स ओके टुडे बट इट्स नॉट ओके ऑन सैटरडे।
तो महाराज पूछना चाहते हैं कि आप संतुष्ट हैं? आपने उत्तर दिया कि हम तो सबको छोड़ना मुश्किल है।
There's so many people accustomed to so many things throughout their life, and they change.
Maharaj ne uttar diya ki aap devi devtaon ki puja ki baat kar rahe hain, par itne sare log aapko milenge jo alag alag cheeze ya vyasan alag alag cheezon mein group hain, par wo log chhod denge.
But in Jagannathpuri, the system is that they worship Krishna, and then there are different temples of Devi Shiva, and they give the prasadam of Lord Jagannath to all of those devotees. So if you like, on one day you can worship Krishna and give the prasadam to Devi. The next day you can worship Krishna and give the prasadam to Lord Shiva. The next day, like that.
So Maharaj ne uttar diya ki jaise Jagannath Puri ke andar jahan pe mandir ke andar bhi koi devi devtaon ke liye mandir hai, par swayam Bhagwan Krishna Jagannath ji ke roop mein wahan pe, to wahan pe pratidin pehle Bhagwan Krishna ko bhog lagaya jata hai, उसके बाद उनका प्रसाद सभी देवी देवताओं को वितरित करा जाता है। तो महाराज ने आपके लिए यह उत्तर दिया कि अगर आप चाहें तो आप प्रतिदिन क्या कर सकते हैं, आप एक दिन भगवान कृष्ण को भोग लगा के, जिस दिन आप देवी माता की आराधना करते हैं भगवान कृष्ण को भोग लगा के वो प्रसाद देवी माता को अर्पित करिए, जिस दिन आप शिव जी की पूजा करते हैं उस दिन पहले भगवान कृष्ण को भोग लगा के फिर शिव जी को दीजिए, इस प्रकार से आप देवी देवताओं की पूजा भी निरंतर कर सकते हैं और भगवान कृष्ण का भी उपदेश प्राप्त कर सकते हैं।
You're not very old, you can change.
Maharaj ne kaha ki aapki umar zyada nahi hui, aap badal sakte hain chahe to. There is a question. Every religion believe God is one, but why the people are fighting with each other? So agla prashan ye hai ki sab dharmon mein kaha jata hai ki Bhagwan ek hai, पर ऐसा कहने के बावजूद भी ये सारे धर्म आपस में लड़ाई क्यों करते हैं? सब अलग अलग धर्म के लोग आपस में लड़ाई क्यों करते हैं?
Because of political manipulation.
तो महाराज ने कहा इसका कारण है राजनीति, राजनीतिक जो लोग होते हैं, राजनीतिक जो लोग होते हैं वो आपस में लड़ाई
कराते हैं।
इन लड़ाइयों का, इन धर्म में आपस की लड़ाई का इसका धर्म से कोई संबंध नहीं।
There's a big clash between Christianity and Islam.
जैसे बहुत बड़ी लड़ाई हुई है ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के बीच में।
If the Jews had oil, there'd be a big clash between Christianity and Judaism.
अगर Jews जो थे, अगर उनके पास समक होते, तो बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती थी ईसाई लोगों के बीच में और Jews के बीच में।
If the Jains had oil, there'd be a big clash between Christians and the Jains.
अगर जो लोग जैन धर्म का पालन करते हैं, अगर वो बहुत उत्साहित हो जाए, तो वो भी आपस में लड़ाई कर सकते हैं ईसाई लोगों के साथ में या मुस्लिम लोगों के साथ में।
People are not fighting about God, they're fighting about money.
तो लोग आपस में लड़ाई भगवान के लिए नहीं करते, धर्म के लिए नहीं करते।
And the politicians throw God in there as a diversionary tactic.
तो वे लड़ाई करते हैं पैसे के लिए। और जो राजनीतिक लोग होते हैं वो बहुत सक्षम होते हैं कि किस प्रकार सब लोगों को आपस में लड़ाना चाहिए उससे।
I bomb your village and when you fight back, it's because I'm a religious fanatic. I bomb your village and when you fight back, it's because you're a religious fanatic.
तो जैसे कई लोग किसी गांव के ऊपर बम डाल देते हैं और उसके बाद में अगर उस गांव के लोग जाके लड़ाई करें तो उनको कहा जाता है कि अरे आप तो बहुत ज्यादा ही कट्टरवादी धार्मिक लोग हो, इसलिए आप लड़ाई कर रहे हो।
Call the dog a bad name and hang him.
जैसे अंग्रेजी के अंदर एक कहावत है कि आप किसी भी कुत्ते को बुरा नाम दे दो तो वो ये पागल कुत्ता है और उसके बाद उसको मार डालो।
They think about so many words. So World War One, was it about God?
अगर हम विश्व युद्ध की बात करें तो जो सबसे पहला विश्व युद्ध हुआ था क्या वो भगवान के लिए हुआ था या धर्म के लिए हुआ था?
World War Two, God?
विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध क्या वह भगवान या धर्म के लिए हुआ था?
Korean War, God?
कोरिया की लड़ाई क्या वह भगवान या धर्म के लिए हुई थी?
Vietnam War, God?
वियतनाम की लड़ाई क्या वह भगवान या धर्म के लिए हुई थी?
So this idea is going off. Everyone's fighting about God. No one gives a damn about God. They're fighting about sense gratification.
तो ये सिर्फ एक 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 तरह का मन घड़ा भावना बनाई हुई है और बोला जाता है कि लोग आपस में भगवान के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। पर असलियत ये है कि कोई धर्म के लिए भगवान के लिए नहीं लड़ रहा। लोग केवल पैसे के लिए और अपने इंद्रियों का भोग करने के लिए लड़ रहे हैं।
They're fighting because they're cats and dogs, and cats and dogs business is fighting.
वह आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति कुत्ते और बिल्ली की जैसी है। तो जब मानसिक स्थिति कुत्ते और बिल्ली की जैसी रहेगी तो वह आपस में जरूर लड़ेंगे। आप लोग इधर ध्यान दीजिए, वो पीछे देखते हैं। तो जी का जो प्रश्न था क्या आपको उत्तर मिल गया? अच्छा, क्या आपको उत्तर मिल गया या आप और कुछ पूछना चाहते हैं और इसके ऊपर? Given that God is one and you give an explanation that it is politics the only reason that is the question? Is politics?
No, not only politics, business.
तो महाराज ने उत्तर दिया नहीं, पॉलिटिक्स ही केवल अकेला कारण नहीं है लड़ाई का, दूसरा कारण है व्यापार।
War is good for business.
लड़ाई व्यापार के लिए बहुत अच्छी होती है, जो बड़े देश हैं उनके व्यापार के लिए लड़ाई बहुत अच्छी होती है।
In the United States of America, so much money is given for taxes, and something like 50% of the tax is spent on defense, which means tanks and bombs and guns and so on.
जैसे अमेरिका देश है, उसके अंदर लोग इतना ज्यादा टैक्स देते हैं, हर एक की सैलरी में से 30-40% टैक्स देती है गवर्नमेंट। अब इतना पैसा कलेक्ट करने के बाद उसमें से 50 आधा भाग जो है वो केवल डिफेंस लड़ाई के लिए प्रयोग में करा जाता है। तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा है डिफेंस कंपनी व्यापारियों के लिए।
So how much money is being made in that industry?
तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार से कितना पैसा बना रहे हैं व्यापारी लोग, बिजनेसमैन लोग, जो इस डिफेंस या ये बम गोले बारूद और टैंकों का धंधा जो करते हैं.
And the politicians are going in and out. One day he's a government officer, the next day he's working for a defense contractor.
और अगर आप वास्तविक रूप में देखें तो जो राजनीतिक होते हैं, जो लड़ाई कराते हैं, आज वो लड़ाई आज नेता है और कल चल के आप जानेंगे या पहले जानेंगे कि आगे चलकर वो जो कंपनी है जो बारूद बनाती है, जो टैंक बनाती है, उसके अंदर जाके वो काम करते हैं.
The defense companies are full of military men and government men. Sometimes they're in the government, sometimes they're in the company, sometimes they're in the government, sometimes and the business is huge.
तो अगर आप देखें वास्तविक रूप में तो क्या हो रहा है, ये जो बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां हैं अमेरिका के अंदर, उसके अंदर केवल कौन से लोग हैं जो पूर्व पहले बहुत बड़े बड़े मिलिट्री के अंदर जनरल थे या राजनेता थे, पहले वो राजनेता बनते हैं, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो कंपनी में काम करते हैं, फिर उसके बाद इलेक्शन से फिर राजनेता बन जाते हैं, इस प्रकार का चक्कर करके पैसा बनाते हैं.
Apart from that, there's another business. After I bomb your country and smash everything, then my company will come in and rebuild everything.
आप दूसरा धंधा जो शुरू करा वो ये कि पहले तो अमेरिका जैसा देश कहीं जाएगा, वहाँ पे जाके सब तहस नहस कर देगा किसी कारण को लेकर, फिर उसके बाद वहाँ उसी देश की एक कंपनी जाएगी और उस देश का पूर्ण फिर दोबारा से निर्माण करेंगे, सब सड़कें पहले तोड़ देंगे, उसके बाद दोबारा सड़कें बनाने के लिए फिर पैसा और लेंगे.
That's more billions of dollars worth of business.
तो इससे और अरबों रुपया और बना सकते हैं.
And meanwhile, apart from the money I'm spending on the military activities and the money that I'm getting in the business of rebuilding, there's also the actual purpose of the war, which is stealing property. So that's also good business.
क्योंकि इससे तीसरा जो हमको अच्छी चीज मिलती है वो ये है, एक पहला तो पैसा बनाते हैं कि ये जो बड़े बड़े प्लेन बारूद इसमें पैसा बनाते हैं जिससे वो देश को तहस नहस करते हैं किसी देश को, जैसे अफगानिस्तान. उसके बाद दूसरा पैसा बनाते हैं वहां पे जाकर उसको दोबारा से रोड घर बनाने में, और तीसरा पैसा ऐसे बनाते हैं कि वहां पे जाकर वो जगह को पूरा हथिया देते हैं जो कि उसको और पैसा मिलता है.
सिंपल ग्रीड.
तो सिंपल ग्रीड ये केवल लालच है.
The problem is not that the problem is they're forgetting Krishna. They're fighting like cats and dogs over stolen property. It's all Krishna's property and they're all cats and dogs fighting over it. That's the problem.
Asli jo yahan pe problem hai wo ye hai, ye sab bhagwan ko bhool kar, ye bhool kar ki ye jo puri srishti hai bhagwan ki hai, isko bhool kar aapas mein kutte billi ki tarah, jaise kutta apne area ko protect karne ke liye एक दूसरे कुत्ते के साथ लड़ता है, उसी प्रकार ये लोग आपस में लड़ रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि वो भूल गए कि ये पूरी सृष्टि भगवान की है. दूसरा यहाँ पे एक और प्रश्न था. आई नो कृष्णा इज द गॉड बट हु इज राम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हरे.
राम इज एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा.
तो प्रश्न है मैं जानता हूं कि कृष्ण भगवान हैं, पर राम कौन है और ये हरे शब्द का क्या अर्थ है. तो महाराज ने बोला कि राम जो है वो भगवान कृष्ण के विस्तार है.
रामादि मूर्ति शुकलानि अनेन कृष्णं. राम जी श्री कृष्ण अवतार, श्री कृष्ण का अवतार, कृष्ण का अवतार.
सो
राम इज द सोर्स ऑफ ऑल द अवतार्स. And Ram is one of the important avatars of Krishna.
So, Brahma Samhita mein jaise bataya gaya ki Bhagwan Ram Krishna ke avatar hai aur Bhagwan Krishna ke bahut anginat avatar hai, usme Bhagwan Ram ek pramukh avataron mein aate hain.
When we worship Krishna, Ram is also included.
But agar aap Bhagwan Krishna ki puja karenge, unki seva aur bhakti karenge, to aap apne aap Bhagwan Ram ki bhi
Shrimadeva is also included. Narayan is also included.
तो उसी भक्ति के अंदर भगवान कृष्ण की भक्ति के अंदर नरसिंहदेव भगवान की भक्ति भी आ जाती है और नारायण भगवान की भक्ति भी उसके अंदर आ जाती है.
Even Shri, Devi, Sabi, they're also included because they're all part of Krishna and Krishna is the whole. When you worship the whole, the parts are included.
तो शिव जी की सेवा, देवी की सेवा ये भी पूर्ण तरह हो जाएगी अगर आप भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण इन सब के परम पिता हैं और उनकी सेवा से ये सब की सेवा हो जाती है।
But Ram is directly Vishnu Tattva. So the devatas like Shiva, Durga, Ganesh, they're not on the same level as Lord Ram.
But Bhagwan Ram, Shivji or Devi mein arth hai, unme farak hai. Bhagwan Ram Vishnu Tattva hai aur Shiv Devi alag tattva hai. Bhagwan Ram ki seva aur Shivji aur Devi ki seva mein arth wo same nahi.
The Krishna and Ram are the same person but in different roles.
Krishna aur Ram ek hi purush hai par wo alag alag role, alag alag cheez karne ke liye, alag alag prayas karne ke liye apna avatar leke aate hain.
And Shiva, Durga, Ganesh, they're the assistants of Prabhu.
Shiv ji, Durga ji, Ganesh ji, ये भगवान की सेवक हैं, उनकी सेवा के लिए आते हैं।
And Hare Krishna means O Krishna, O energy of Krishna, please engage me in your service.
Hare Krishna का अर्थ है, हे भगवान कृष्ण की शक्ति, आप मेरे को भगवान कृष्ण की सेवा में युक्त करिए। Here in Gulf countries, people bracket Kuwaitis give money to Hindus and tell them convert to Islam. Whereas this is not done by Hindus. Why? This often happens and I have seen here in Kuwait. तो इनका प्रश्न है कि यहाँ पे इन देशों के अंदर बहुत पानी देखा जाता है कि लोगों को धर्म बदलने के लिए हिंदू लोगों को धर्म बदलने के लिए प्रोत्साहित करा जाता है पर ऐसा हिंदू लोग नहीं करते ऐसा क्यों
Because you're another sheikh.
क्योंकि आप शेख नहीं है इसलिए नहीं करते
You don't have so much money.
और आपके पास इतना पैसा नहीं है इसलिए नहीं करते
You can take their money and go on chanting Hare Krishna.
आप उनका पैसा ले लीजिए और उसके बाद अपना जप करते आखिरी प्रश्न अगर किसी का कोई आखिरी प्रश्न है जिन्होंने पहले जिन्होंने अगर कोई प्रश्न नहीं पूछा है तो उनसे मैं चाहूंगा जिन्होंने प्रश्न नहीं पूछा वो पूछ सकते हैं उसके बाद में जिन्होंने प्रश्न पूछ लिया उनको अवसर दिया जाएगा तो यहाँ पे माता जी लोग स्त्री लोग जो हैं या इधर पीछे जिन्होंने प्रश्न नहीं पूछा है वो प्रश्न पूछ सकते हैं
हिंदू शास्त्र के मुताबिक हमारा धर्म सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है तो सनातन धर्म में जो हमारा हिंदू का जो धर्म है सनातन धर्म जैसे मुसलमान का है इस्लाम का है तो सनातन धर्म के अंदर एक ऐसा यूनिटी क्यों नहीं है
ऐसा क्या नहीं है
नहीं यूनिटी मतलब जो हम किसी को पूजा करते हैं सनातन पूजा करते हैं या कोई एक होना चाहिए जैसे कि हिंदू शास्त्र के मुताबिक उसने दिया हुआ है गीता में लिखा है ब्रह्म मैं निरंकार वर्ग हूँ तो फिर खुद भी ये 56 करोड़ जो देवता है अम्बा जी का गीता जी हो सामाजिक चुना जी हो साई बाबा तो मकर बाबा ये सब कहाँ से आया है वो कहाँ मिस्टेक हुआ है सनातन धर्म के अंदर जो एक को नहीं हम लोग मानता है
तो इनका प्रश्न मैं रिपीट करता हूँ संक्षेप में इन्होंने पूछा कि बाकी धर्म जैसे इस्लाम है उनके अंदर एकत्रता है एक साथ वो एक सेवा एक पूजा करते हैं पर हमारे